SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। सर्वोच्च न्यायालय से सख्त डांट खाने के बाद और किसानों के बढ़ते दबाव के चलते उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आखिरकार केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार देर रात हिरासत में ले लिया। उनके ऊपर गाड़ी द्वारा चार किसानों को कुचलकर हत्या करने का आरोप है। उन्हें FIR में नामजद करने के तकरीबन 6 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच कर रहे DIG उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आशीष मिश्रा को कई सवालों का जवाब न देने और जांच में सहयोग न करने की वजह से हिरासत में लिया गया। उन्हें सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन किसान संगठनों में घटना को लेकर अभी भी रोष है और उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को रखते हुए अपना आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार किसान संगठन 12 अक्टूबर को मारे गए 5 लोगों के लिए घटना स्थल पर अंतिम अरदास करेंगे और फिर उनके अस्थि कलश लेकर उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में जाएंगे। 15 अक्टूबर को दशहरे के दिन किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों का पुतला फूंकेंगे। 18 अक्टूबर को देशव्यापी रेल रोको अभियान होगा और 26 अक्टूबर को लखनऊ में 8 लोगों की दुखद मृत्यु पर विरोध जताने के लिए एक महापंचायत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता योगेंद्र यादव ने किसानों की 5 अपील रखते हुए कहा,
की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे, हमारे सब साथियों ने कहा नहीं नहीं मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये, हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं, हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा।
किसान और विपक्षी दलों का मानना है कि श्री अजय मिश्रा टेनी के गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद रखना बेमानी है। लखीमपुर घटना आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरती दिख रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर घटना को केंद्र बिंदु बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा।
पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी, जो परिवार है पीड़ित परिवार है उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर घटना के ऊपर भाजपा पर निशाना साधा है।
जो गद्दी पर बैठे हैं अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहाँ पर किसानों को कुचल दिया गया, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे।
दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों ने गैस और कोयले की कमी के चलते बिजली के गहराते संकट पर केंद्र की मोदी सरकार को गुहार लगाई है। इन राज्यों का कहना है कि यदि जल्द ही ईंधन की आपूर्ति नहीं की गई तो बिजली उत्पादन में कमी के कारण उन्हें जबरन ब्लैकआउट करना पड़ सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने इस विषय में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल से बात कर ली है और केंद्र ऐसा कोई संकट सामने नहीं आने देगा।
सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के किसी भी गैस स्टेशन में जितने गैस की जरूरत होगी वो गैस आप देंगे, ये हमने सीएमडी गेल को कहा और उन्होंने अश्योर किया कि वो गैस की उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएस साइंड है एनटीपीसी के साथ या डीवीसी के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशन के साथ, उतने पीपीएस की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे।
लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा
कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है, और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस, हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में जेल भेजे जाने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। कई राजनीतिक नेताओं और बॉलीवुड हस्तियों ने इस केस के जरिए मोदी सरकार पर देश में चल रहे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ना तो आर्यन खान के पास ड्रग्स मिलने का और ना ही उनके सेवन करने का आरोप लगाया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने एनसीबी की रेड में दो भाजपा कार्यकर्ताओं किरण गोसावी और मनु भानुशाली के मौजूद होने पर सवालिया निशान लगाया है। साथ ही उन्होंने रेड के दौरान पकड़े गए भाजपा के तीन करीबी लोगों ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला को भाजपा नेताओं के कहने पर छोड़ने का आरोप भी लगाया।
हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा।
एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सभी आरोपों का खंडन किया है।
ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट द एनसीबी आर बेसलेस, मोटिवेटेड, आफ्टरथॉट एंड प्रीजुडिस्ड। सच स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन कंजेक्चर एंड अजम्पशंस। These assumptions are frivolous and malicious in the view of document and record produced duly followed by NCB that can be subject to legal verification. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased, and all the suspect and accused persons have been treated at par and in accordance with law.
आर्यन की जमानत याचिका की सुनवाई आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में की जाएगी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नरलीकर ने शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत अर्जी अपने अधिकार क्षेत्र में न आने के कारण रद्द कर दी थी और उन्हें सेशंस कोर्ट जाने की सलाह दी थी। और आइए अब सुनते हैं कुछ खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन के पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने कांटे के मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हरा फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके ने यह मैच 4 विकेट से जीता। आखिरी ओवर में 13 रनों के लक्ष्य को एमएस धोनी ने बिना कठिनाई के 2 बॉल शेष रहते हुए पूरा कर लिया। दूसरे क्वालिफायर से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। जीती हुई टीम का मुकाबला दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। फाइनल्स सीएसके और दूसरे क्वालिफायर के विजेता के बीच 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। रविवार को खेले गए महिला बैडमिंटन उबर कप के ग्रुप बी के पहले दौर में भारत ने स्पेन को करारे संघर्ष में 3-2 से मात दी। हालांकि पहले मैच में भारत की साइना नेहवाल को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर होने की वजह से मैच खोना पड़ा, लेकिन उसके बाद मालविका बंसोड़ ने बेट्रिस कोरेलेस को 21-13, 21-15 से हरा भारत को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। तीसरे मैच में तनिषा क्रेस्टो और ऋतुपर्णा पांडा की जोड़ी ने पाउला लोपेज और लॉरेना उस्ले की जोड़ी को आसानी से 21-10, 21-18 से हराया। चौथे मैच में भारत की अदिति भट्ट ने 18 वर्षीय आनिया सेठीन को 21-16, 21-14 से हराकर निर्णायक जीत दिला दी। अंतिम डबल्स मैच में अश्विनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी की जोड़ी को क्लारा एजुरमेंडी और बेट्रेस कोरलेस से 18-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। अब भारत का मुकाबला 12 अक्टूबर को स्कॉटलैंड और 13 अक्टूबर को थाईलैंड से होगा। समाचारों को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा से आप सबको मनन कुमार का नमस्कार।